आगे चलते हैं जी, बस सेकंड लास्ट रुकू रह गया। देखिए कैसे प्यार से मेरा पारा पूरा होने के करीब आ जाता है, मैं बता भी नहीं चलता। रुकू नंबर 15, आयत नंबर 122 से 129, 122 to 129। टॉपिक लिखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान की आजमाइशों पे पूरा उतरना। अब यहां मुझे नहीं पता कितना वक्त लग जाएगा। जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, आज बात भी ईमान की है, लेकिन हम पहले तर्जमा पढ़ेंगे। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलादे याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो, और मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीला दे रखी थी। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ भी फायदा नहीं देगा। सोचिए, ना किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना इसे कोई शिफात नफा देगी, ना इनकी मदद की जाएगी। वैसे बतला इब्राहिम, बस इसको अब ज़हन में रखिए। शायद को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सब को पूरा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे कि मेरी औलाद को भी? फरमाए, मेरा वादा जालिमों से नहीं। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमनो अमान की जगह बनाया, तो मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, तू इस जगह को अमन और अमान वाला शहर बना, और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोजियां दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा, और ये पहुंचने की बुरी जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमा बरदार बना ले, और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुजार रख, और हमें अपनी इबादतें सिखा, और हमारी तौबा को कबूल फरमा। तू तौबा कबूल फरमाने वाला और रहमो करम करने वाला है। अल्लाह ये सारी दुआएं आज हमारी और हमारी नस्लों के हक में कबूल हो जाए। ऐ हमारे रब, इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हें किताबो हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। यकीनन तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह, ये है जी आज के इस हिस्से यानी पारा वन का ईमान की ताकत का पाठ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? ये वो हैं जिनको मिलने को हम सब ख्वाहिश करेंगे। कोई पारा, आज पहला पारा है ना, पहले पारे से लेके 30वें पारे तक इनका तस्करा है, और जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा आया है अच्छे ही लफ्जों में आया, और यहाँ जो पहली आयत आई वैज़े बितला लिखिए, ईमान की ताकत क्या है? आपके ऊपर लेके कहूंगी, जिन्हें अमल की नजर से, आप कभी बीमार हुई, कभी आपको बच्चे का कोई गम लगा, कभी आपको अपने भाई बहनों से कोई सदमा मिला, मिलते ही रहते हैं। आप कह दीजिए अगले पारे में जो आयत आती है कि लनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुस, मसाइबे खमसा, एक मुश्किल से निकलते हैं दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलते हैं ना। ये जो आजमाइशें है ना, इसका ग्राफ हमारे ईमान के साथ चलता है। अगर आप अपने नोट्स में एक ग्राफ बनाए, आपको पता है कि एक ऐसे वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है ना, जितना जिसका ईमान बढ़ता जाता है उतनी उसके ऊपर आजमाइश बढ़ती जाती है, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान की ताकत देखिए, हर वो टेस्ट जो किसी एक पे आ सकता है वो सब के मिलके इकट्ठे होकर हजरत इब्राहिम पे आते हैं। मुशरिक माहौल में आंख खोली, उर कौम थी, कबीला था, उस दौर की सुपर पावर थी। इनका बाप बादशाह के दरबार में एक वजीर था और बुत परस्त नहीं, बुत फरोश था, बेचता था। एक बच्चा जो कुफर के माहौल में पैदा किया गया, चारों तरफ खानदान बिरादरी बुतों की पुजारी, उनके तो वो खुदा थे ना। लेकिन आज शुरू है ना सिलसिला, आप पढ़ेंगे तीसवें पारे तक, इस शख्सियत को आप पहचानेंगे। जो चीज मेरे आपके लिए इसमें फेथ इन एक्शन की आ रही है वो क्या है कि रब्बना तकबल मिन्ना। असल चीज काबिलियत नहीं, कबूलियत है, इसकी फिक्र कीजिए। अफसोस के साथ कहूंगी कि आज उम्मत मुस्लिमा के कल्चर में काबिलियतें बढ़ाते हैं, दो नफल, चार नफल, छह नफल, एक उमरा, छह माह बाद दूसरा उमरा, सदके भी देते, मस्जिदें भी बनवाते, कारपेट भी डालते, इफ्तारियां सहरियां भी करते। लेकिन अल्लाह से ताल्लुक कैसा होना चाहिए, कहीं को हराम तो नहीं है बीच में। देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ, इंसान है ना तो इंसानी मिसालों से हम ज्यादा सीखते हैं। किसी रिश्तेदार से कोई अनबन हो जाए, शरीके के रिश्ते होते हैं, नाराजगी हो गई, चलो तुम अपने घर हम अपने घर, अब वो मिलना जुलना खत्म है, मिलेंगे भी तो मुंह फेर लेंगे। ऐसा कोई फर्द आपको कुछ भेजे, चले ट्रे में खाना डालकर मासी के हाथ भेज दिया, रखेंगे? खुद कहीं मिलते नहीं, देखें तो मुंह फेर लेते, और आपको बिरयानी भेजी, नहीं लेंगे आप। कितनी भी आपको अजीज क्यों ना, बिरयानी आप नहीं लेंगे। आप उन्हें कहेंगे शुक्रिया, मेरे घर बहुत है, क्योंकि दिल खट्टा है, दिल टूटा हुआ है, नाराजगी। मंगनियां टूटती है ना लोगों, सारे तोहफे वापस कर देते हैं, वो ना ले तो कहते हैं किसी को दे दो हमने नहीं पहनना, दिल खराब होता है इन चीजों को देखकर। अल्लाह ना करे किसी का घर टूटा हो, वो चीजें सारी उठा के फेंकते हैं, कहते नहीं लड़की को इससे वो चीजें याद आती हैं। क्या पता चला कि जहां रिश्ता टूटता है ना वहां चीजें फिर अच्छी नहीं लगती। इसका ऑपोजिट लीजिए, दोस्त जिससे दिल जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, सुबह शाम का रब्ता, दाल बनाती है और प्लेट में डालकर चावल दाल डालकर आपके घर भेजती है, क्या करते हैं आप? खुशी से ले लेते हैं। अब बिरयानी की काबिलियत ज्यादा थी दुनिया के हिसाब से, मेरी नजर में नहीं, वैसे माफ करिएगा सारे बिरयानी वाले। दाल चावल तो सस्ते हुए, हमारे यहाँ कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं कहती हूँ घर की दाल भी मुर्गी बराबर। तो अब क्या हुआ, इधर आपने दाल भी शौक से खा ली, तारीफें भी की, मजे भी का, और का हमेशा मेरा हिस्सा डालना, कहते हैं ना। अब फर्क क्या हुआ, इधर कबूलियत है, कबूलियत है तो काबिलियत की फिक्र नहीं होती। अल्लाह के साथ अपनी काबिलियत से ज्यादा, काबिलियत मुराद नफिल सुन्नतें एक्स्ट्रास की बजाय, पहले देखिए वो कबूल भी कर लेगा कि नहीं, हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं कि नहीं, हमारी इबादत कबूल हो रही हैं कि नहीं, हमारे उम्र हज कबूल भी हो रहे हैं कि नहीं, ये है इसमें पैगाम। फिर आजमाइशों को अपने हक में बुरा नहीं जानना, आजमाइशें बंदे को पाक करती हैं, और सिर्फ नमाज के लिए नहीं, इकामत दीन के लिए भी क्याम करना है। और सबसे बड़ा अमल का जो नुक्ता इस हिस्से में है ना, लिखिए औलादों के ईमान की फिक्र कर लीजिए। आपकी औलादें ईमान को रद्द कर चुकी हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हमारे घरों में हो, लेकिन कुछ परसेंटेज गया जा रहा है। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपनी औलाद के ईमान की भी फिक्र करनी है। कैसे? हजरत इब्राहिम ने अपने साथ किसको लगाया? इस्माइल को। तो नेकी के कामों में अपनी औलादों को अपने साथ शामिल कीजिए, बहाने बहाने उनको साथ लाएं, बेटा ये कंप्यूटर खोल दो, ये जरा जूम कैसे खुलता है, अच्छा ये कर दो, इसी में सुनने लग जाएंगे आप। इसी तरह से औलादों के लिए दीन और दुनिया दोनों मांगना है। उनको खुशी मिलेगी कब? जब हम बेहतरीन तरीके से इसके साथ होंगे। चलिए आखिर को है पारे का, रुकू नंबर 16 सूरह बकरा का 130 से 141, टॉपिक है मिल्लत इब्राहिम क्या है। वमन यरगबु अम मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिह नफ्सह। وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. کیا ججمنٹل جملہ، لیکن اللہ کو حق ہے کیونکہ وہ جج کر سکتا ہے، وہ حاکم بھی ہے حکم بھی ہے. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی عزت دی تھی یعنی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے. جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا اسلم، بی مسلم، بی سبمسو، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا کہ میں تو فرما بردار ہو گیا، میں نے تو رب العالمین کی فرما برداری کی. اور یہ تو باپ تھا، اب آگے اولادوں میں کیا ہوا؟ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا. یا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آبا اجداد ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. سوچیے کتنی سکون کی موت آئی ہوگی حضرت یعقوب کو. بچوں نے زندگی میں کہا تھا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے. ان کے عمل کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. یہ تو ایسے لگا ہمیں کہا. یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کا سب سے لمبا لفظ اس آیت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اس ایک لفظ کے اندر پانچ لفظ ہیں. اور آخر میں آپ کو مجھے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. اور یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. کیا خوبصورت اینڈ ہے اس پارے کا. دیکھیے گا ذرا، رکوع 15 میں دو آیات ایمان سے متعلق تھیں. پہلی 136 بقرہ، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا. کیا پتہ چلا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جو بھی نازل ہوا سب پر ایمان لانا ہے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور آیت 137 بقرہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لائیں ویسا ایمان جیسا تم لائے تو ہدایت پا جائیں گے. یہ ہے آپ کے میرے لیے ایکشن پوائنٹ، فیتھ ان ایکشن میں ایک سٹینڈرڈ، ایک کرائیٹیرین دیا جا رہا ہے آپ کو مجھے. صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ایکسیپٹ ہوگا. आपको किसी भी पेपर में गवर्नमेंट से या आपके कॉलेज स्कूलों से एक पेपर मिलता है, आप उसी को हल करके जवाब देते हैं ना, यानी जो क्वेश्चन शीट है वो गवर्नमेंट की तरफ से आई तो आंसर आप देते हैं। आपके मेरे लिए इस मिसाल में सहाबाए कराम वो रोल मॉडल है जिन्होंने बेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, वो की बन गए, लिख लें आप चाहे, पेपर की मांगते हैं लोग, सहाबाए कराम की हैं, की चाबी नहीं, वो स्टूडेंट जिसका सारा पेपर ठीक हो वो एक की होता है। बल्कि टीचर्स अच्छे स्टूडेंट्स के एक दो पेपर चेक कर लेते हैं, एक दो अच्छे स्टूडेंट्स के पेपर चेक करके सामने रख लेते हैं, अच्छा बाकी भी वालों के इसी पे देखेंगे। तो कलर मैच करना होता है ना, शलवार दुपट्टा कमीज मैच करते हैं ना, तो एक चीज घर से लेके जाते हैं दूसरी खरीद के लाते हैं। अल्लाह ने आपको मुझे एक गोल दिया, आज मत देखो आज वालों को, मत देखो फलां वालों को, सहाबा को देख लो, जैसे वो थे ना तुम वैसे बन जाओ। तो एक्शन पॉइंट में आपको मुझे इसमें क्या मिला कि नेक लोगों की सोहबत में रहना है। सहाबा कराम निखरे कुंदन बने तो वो सोहबत किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के हर हुक्म को दिल और जान से निभाना है, अबोजदाद की अंधी तकलीद से बचना है, जिंदगी को यकसू होकर यानी फोकस्ड होकर गुजारना है। इब्राहिम की ये खूबी थी, और मैंने तो इस चीज पे अपने दिल को बांध लिया है। जब तक मैं फोकस होकर आपको पढ़ा नहीं सकती, मुझे नहीं पढ़ाना, और सिर्फ मैंने उस दिन तक आपको पढ़ाना है जब तक मैं फोकस हूं। अल्लाह ना मुझे किसी आजमाइश में डाले, ना मेरे ऊपर कोई ऐसे हालात आए, मैं उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगी। क्योंकि आप तो यहाँ सिर्फ ये 2-2.5 घंटे पढ़ के जाते होंगे ना, जाके भी याद रहता होगा, लेकिन मैं जितना मैं आपको इस वक्त पढ़ाने में एंजॉय कर रही हूँ ना, इससे भी ज्यादा मैं इसकी तैयारी में बाकी समझे 20-22 घंटों में एंजॉय करती हूँ। जैसे वो क्रेविंग नहीं होने लगती किसी भी चीज की, आप उसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक खुद सोच लें क्या चीज का मजा आ रहा होता है। किसी को बातों का मजा आ रहा है वो बातें करें, किसी को चाय पीने में मजा, किसी को शॉपिंग का क्रेज होता है, विंडो वॉचिंग ही सही, वाला ही अभी भी मेरे दिमाग में है कि हाय कल के बारे में क्या आना क्या करना क्या। और मैंने ये तकरीबन इस पूरे बीच के वक्त में फ्यू आवर्स निकाल दें, मैं तो कहती हूँ कि जागते सोते इस सिर्फ मुझे सेकंड पारे के ख्वाब आएंगे आज, क्योंकि मैं फोकस्ड। आप यहाँ बैठकर फोकस्ड है ना तो आपको असर हो रहा है। जो घरों से माशाल्लाह इतने लोगों को अल्लाह जो सुनवाता है वो फोकस्ड है तो बैठे हुए हैं ना, और अगर उसमें से भी उठ रहा है भाग रहा है कभी इधर जा कभी उधर, वो भी देख वो भी देख, उसको उतना असर नहीं होगा। तो आज यहां से एक नियत करके हमने उठना है कि हमने जिंदगी फोकस होना है। टीचर को बहुत फोकस्ड होना चाहिए। अगर आपके हालात अभी इस काबिल नहीं है ना तो थोड़ा सा एक पॉज ले लीजिए। कल भी मेरी किसी से बात हुई, बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी है, वो तो पढ़ाती है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो कहने लगी कि मैंने तो अपनी बहुत सारी चीजें कम कर दी हैं क्योंकि हालात अब बदल रहे हैं ना, जब बच्चे बड़े होते हैं ना हमारे मसले भी बड़े हो जाते हैं। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में मुझे तो ऐसे लगता है अल्लाह ने प्रिजर्व कर दिया मुझे पढ़ाने के लिए, सेव कर दिया, और अल्लाह हमेशा सिक्योर रखे। फिर इसके बाद अगली चीज, अल्लाह की इबादत कीजिए मगर मुकम्मल खलूस के साथ। और ये पढ़ना और पढ़ाना भी एक इबादत है, खुशी से मोहब्बत से ये काम कीजिए ताकि अल्लाह आपसे राजी हो। और फिर जो आखिरी पैगाम था, सिबगत अल्लाह का बुनियादी तौर पर, तो अल्लाह के दीन के रंग में रंगना है। और आपको पता है कि अल्लाह के दीन का रंग कैसे रंगा जाता? जब आप मिल्लत इब्राहिमी पे चलते हैं। सवाल लिखिए कि मिल्लत इब्राहिमी पे कौन अमल नहीं कर सकता? क्यों नहीं लोग करते? इतना प्यारा तो हमारा दीन है, वो नहीं कर सकता जो कुर्बानी नहीं दे सकता या देना नहीं चाहता, सिर्फ दुनियादारी निभाता और इताअत की बजाय बेअमली के बहाने ढूंढता है। इलाज क्या है? सिबगत अल्लाह। सिबगत कहते कलर को, एक होता है लोन, मा लोनुहा, इसी बारे में पढ़ कर आए हैं आप गाय के वाक्य में, वो कुदरती रंग होता है नेचुरल। सिबगा कहते हैं डाई को, लिख लें, रंग दो तरह के ना, एक नेचुरल कलर्स हैं एक डाई है, सिबगा डाई है, नेचुरल नहीं है, ये चढ़ाना पड़ता है। और ये कैसे चढ़ता है? जब बंदा बंदगी का इकरार करता है, पारा शुरू हुआ था इया का नाबुदु से, पारा एंड हो रहा है सिबगत अल्लाह। तो लिख लीजिए कि अल्लाह का रंग बंदगी का रंग है, उसकी इताअत का रंग है, इसके रंग में रंग जाने वाला बंदा बन जाता है, आप और मैं बंदी बन जाएंगी। अल्लाह करे कि मेरे आपके लिए ये सफर आसान हो जाए। अब आप इस सब को समझ चुकी पारा पूरा, अब बिल्कुल रिलैक्स्ड, फेथ इन एक्शन, ईमान की शाखों की सूरत में पढ़ रहे हैं। पहली शाख हमने पहले हाफ के साथ पढ़ी, क्या थी? अल्लाह पर ईमान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बंदे मोमिन की डिक्शनरी में वही लफ्ज होता है। आज हम दूसरी शाख पढ़ेंगे और वो क्या है? रसूलों पर ईमान। हदीस भी है और कुरान की आयत भी है, 285 बकरा। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله। रसूल इस हिदायत पर ईमान ले आया जो इसके रब की तरफ से इस पर नाजिल हुई, और जो लोग इस रसूल को मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके रसूलों को मानते हैं, और इनका कॉल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, यानी किसी को मानना और किसी को नहीं मानना। तो रसूल कौन होते हैं और आप और मैं रसूलों पर ईमान कैसे लाएंगे? हमारा ईमान होना चाहिए कि रसूल अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, जो बंदों को अपने रब से जोड़ते हैं। और नबूवत बशरियत की मेराज है। अंबिया कराम के बारे में सूरत शूरा की आयत 51 में आता है, वमा कान अली बशरिन ऐं युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहया। किसी बशर का ये मुकाम नहीं कि अल्लाह इसे रूबरू बात करे। इसकी बात या तो वही यानी इशारे के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगंबर यानी फरिश्ता भेजता है जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और वो इसके हुक्म से वो जो कुछ चाहता है वही करता है, वो बरतर और हकीम है। क्या पता चला कि नबियों के पास रसूलों के पास वही आती है? सूरत कहफ की आखिरी आयत 110 ले लें, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد। اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی الہ ہے, اور پتہ کیا چلا کہ پروفٹس آر ہیومن, لیکن انسانوں میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ دو لفظ آپ سنتے ہیں, ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی, دونوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر دو, ان پر اور ان کی تعلیمات پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تیسری بات, اللہ کی مرضی سے بعض اوقات معجزات بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ کسی رسول میں فرق نہ کریں, جیسے مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ نصارہ موسیٰ کو بھی مانتے, عیسیٰ کو بھی مانتے علیہ السلام, بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نبی نہیں مانتے۔ پیچھے چلے جائیے تو جیو صرف حضرت موسیٰ کو مانتے, نہ عیسیٰ کو نہ مانتے, بلکہ ان کو تو ولد الزنا کہتے, اور اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس کرائیٹیرین پہ امت مسلمہ پوری اترتی ہے۔ دو تین روایات لے لیجئے رسولوں پر ایمان کے بارے میں, پھر اس کو کلوز کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے 4777, آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لو, اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر, اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر, اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لے آؤ۔ بخاری اور مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور جو شخص بھی ان دو حقیقتوں پر بغیر شک اور شبے کے ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا, وہ جنت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو خلاصہ, آپ کے میرے عمل کا کام, اطاعت رسول کیجیے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کی اطاعت کیا ٹائم باؤنڈ ہے؟ رمضان میں, حج کے دوران, عمرے پہ نہیں, مشروط ہے ہر حال میں ہر وقت۔ رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, رسول کی مکمل اطاعت کرنی ہے۔ نبی اور رسول اعلیٰ صفات اور بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں, ہمیں بھی ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں یاد رکھیے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ سب سے اوپر ہے، اور ایک چیز جس پہ ایمان لائے بغیر آپ کا میرا کوئی عمل قبول نہیں، وہ کیا ہے؟ کہ آپ خاتم النبیین تھے، آخری نبی تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین. ہم پڑھیں گے دور قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، تمام بنی نو کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ کی نبوت کا زمانہ ٹائم باؤنڈ نہیں، قیامت تک ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ نے سورت بنی اسرائیل 79 میں فرمایا، اسائیں یہ بسک ربک مقام محمودا، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اور وہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اس پہ ایمان رکھیے، جنت میں داخلنے کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی، جہنم سے نکالنے کے لیے کچھ لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے، اور بعض مومنوں کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سفارش کریں گے. آپ نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی ہوگی. خوش ہو جائیے، امید رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق ادا ہوگا. یعنی بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کو نہیں مانتے. یہ ترمذی کی روایت تھی 2436. فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی ہوگی، کفر اور شرک کے مرتکب افراد کے لیے سفارش نہیں ہوگی، اگرچہ وہ خود کو مسلمان ہی سمجھیں. تو یہ تھی ایمان برسالت. آج جا کر ہم ان سارے کوڈ ورڈز کی روشنی میں سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ کیا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اور آخر میں ہماری دعا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اور دعا سورہ بقرہ کی آیت 129 میں آج گزری ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیاں سنوارے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. آپ انشاءاللہ یہ دعا بعد میں پڑھیں گے. میں اپنی بات کو، اس شعر کو اللہ کے نبی کی نظر کرتے ہوئے کلوز کروں گی. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حقیقت ہے کہ ہم محسنوں کا حق نہیں دے سکتے، جو ہمارے لیے کڑتے ہیں، جلتے ہیں، دکھتے ہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے تو بخا کی کیفیت پہ آ کے امت کا درد کھینچا تھا، آج امت نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.